ओम शांति। आप सभी भाई बहने पिछले तीन दिन से बहुत रुचि से यहाँ बैठकर अपनी कॉन्फ्रेंस को सफल बना रहे हैं, इसके लिए आपको मुबारक हो। मेघना बहन ने परिचय दिया, वो बहुत भावुक हैं। मैं जो हूं जैसा हूं आपके सामने हूं, इसलिए मैं इनको यही कहता हूं कि बाबा ने जो मुझे सिखाया वो मैं शेयर करता हूं। 20 साल की उम्र में जब बाबा के पास आए तो क्या जानते थे हम, दुनिया का तो कुछ पता ही नहीं था। सच्ची पूछो, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले ली, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन गए, पैसे मिलने शुरू हो गए और उसके बाद मन होता था कि अभी करना क्या है। और खासकर जैसे आज मेरे को जो टॉपिक दी गई है, मैं उसके अनुसार अपने लिए सोच रहा हूं कि मेरे सामने जब मैंने ट्रेनिंग पूरी की और शिप पर सर्विस शुरू की तो मेरे सामने बहुत बड़े चैलेंज आते थे। मेरे से सीनियर जो लोग थे, भले उनका रैंक मेरे से कम था पर वो सीनियर थे, उनको जेलेसिस होती थी, बड़ी मुश्किलात होती थी उनके साथ डील करना। जो मेरे कोलीग्स थे उनका मैं बहुत आभारी हूं क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया। और जूनियर्स जो थे उनके प्रति मैं हमेशा एक मन में बात रखी कि इनको मैं अच्छी तरह से हर एक बात में, जैसे मुझे जिस बात का ज्ञान है इनको प्रोफेशनल नॉलेज मिल जाए, भले उनका रैंक मेरे से बहुत नीचे है लेकिन उनको ये ज्ञान मिल जाएगा, वो सारा कारोबार संभालेंगे और मैं अपना टाइम जो है वो ईश्वरी खोज में और उसके अभ्यास में लगा सकूंगा। 1959 में मेरी ट्रेनिंग पूरे हुए एक महीना ही हुआ था, तब मैंने ये ईश्वरी ज्ञान लेना शुरू किया। और एक दिन में सब कुछ मालूम नहीं पड़ता है, इट टेक्स टाइम। कहने में आता है ये 7 दिन का कोर्स है, 7 दिन में तो ABC मालूम पड़ती है, सच पूछो तो। उसको अप्लाई करना प्रैक्टिकल लाइफ में और एप्लीकेशन के बाद फिर जो सामने चैलेंजेस आते हैं उनको क्रॉस करना, उसमें ज्ञान की एप्लीकेशन कैसे होती है, परमात्मा की दी हुई गाइडेंस कैसे काम करती है, वो धीरे धीरे समझ में आने लगा। इट टुक सम टाइम, कम से कम भी मैं समझता हूं 6 महीना तो लग गया था। आप अनुभवी हैं बहुत, इसलिए हो सकता है आपको एक हफ्ते के अंदर ही बहुत कुछ मिल जाए, 5 दिन के अंदर ही बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन ये बात है सारी अभ्यास करने की। जिस तरह का टॉपिक मुझे दिया गया है तो उसमें टॉपिक में विशेष बात ही ये आती है कि आपके सामने भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न सिचुएशन आती हैं। सुबह को आप उठते हैं उस समय से लेकर के आपकी प्लानिंग कुछ होती है, जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां कोई और चीज होती है, और फिर चलते चलते बीच में इतने चैलेंजिंग बातें आ जाती हैं अचानक से। ऐसे टाइम पर एडजस्टमेंट्स وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور اس میں بھی خاص کر میں جب ساکشیوں کے وہ دیکھ رہا ہوں, پیشنٹس کی ایکسپیکٹیشن اپنی ہے, جو ڈاکٹرز نمت ہوتے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز اپنی ہے. آپ کو دونوں کے بیچ میں کافی اپنے آپ کو مولڈ کرنا پڑتا ہے, اور وہ مولڈ کرنے کے لیے اتنی شکتی بھی چاہیے اور اتنا گیان بھی چاہیے. اور اس کے حساب سے یہ جو آج والی ٹاپک ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ضروری ہے, کیونکہ اس کے انوسار ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر مولڈ کرنا نہیں آتا تو کیا ہوتا ہے, پھر ٹکر ہوتی ہے, ریزنٹمنٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد کافی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, سوچ چلتا رہتا ہے کیا کریں ہم, اس میں کیا ہو سکتا ہے. تو ایشوری گیان کے پھل سوروپ دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ باتیں ہم لوگ اتنی اچھی سیکھ لیتے ہیں, ان کی اپلیکیشن سے بہت سارے جھمیلوں سے بچ سکتے ہیں. بہت ساری ایسی سچویشن جہاں پر عام طور پہ لوگوں کی آپس میں بہت انبن ہو جاتی ہے, اس سے بچ جاتے ہیں. اور اس میں خاص ایک تو جو ٹاپک ہے جیسی, کہ اپنے اندر لچیلاپن ہونا چاہیے, ریزیلینس. لچیلاپن کا مطلب یہ نہیں کہ ایکوریسی نہیں ہو, کیونکہ جس طرح کی آپ کی جاب ہے اس میں ایکوریسی تو 100% چاہیے, پر ایکوریسی کے ساتھ ساتھ اپنے من کو بڑا شانت رکھنے کا, امنگ میں رکھنے کا. اور ایک کہا جاتا ہے کہ جو سروس ہے آپ کی, if you can do that service with a smile, مسکرا کر کے وہ کرتے ہیں تو اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. مسکرانا ایک بہت بڑی بات ہے, اس لیے کبھی کبھی آپ کتابیں پڑھیں گے اچھے اچھے رائٹرز کی, اس میں شبد آتے ہیں فورس یور سیلف ٹو اسمائل, اپنے آپ کو زبردستی بھی مسکرانا سکھاؤ آپ. کیوں؟ مسکرانے سے من ہلکا ہو جاتا ہے, لائٹ ہو جاتا ہے, کلیئر ہو جاتا ہے. اور دوسرا ہے کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیزن لینا, وہ بہت بڑی بات ہے. اس میں اگر کہیں بھول ہو گئی, کوئی چک ہو گئی, تو بعد میں پشچاتاپ ہوتا ہے. اس لیے آپ کے اس پروگرام کے اندر وہ ایک ٹاپک اپنا جو دیا ہوا ہے, یہ لندن کے حساب سے انہوں نے شبد لکھے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ جو بک چھپی ہے وہ ساری لندن کے وہاں کے بھائی بہنوں نے مل کر کے چھاپی ہے, انگریزی میں چھاپی ہے. ہم اس کو اگر ہندوستان میں اسی باتوں کو لیں جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے, تو وہ اس ایشوری وشودیالے کے جو کورسز چلتے ہیں اس میں ایک وشیش بات آتی ہے اشٹ شکتیوں کی. راج یوگ کے دوارا اشٹ شکتیاں جو پراپت ہوتی ہیں, وہ اشٹ شکتیاں کیسے ہمیں قدم قدم پر مدد کرتی ہیں. میں میگھنا بہن سے پوچھتا ہوں, آپ کو یاد ہوں گی وہ اشٹ شکتیاں, اگر آپ ایک ایک سنائیں تو بہت اچھا ہوگا. سناؤ.
جتنی یاد ہے اتنی سناؤں گی. پرکھنے کی شکتی, نرنے کرنے کی شکتی, سہن کرنے کی شکتی, سمانے کی شکتی, وستار کو سنکیرن کرنے کی شکتی, جو سمیٹنے کی شکتی, وستار کو سنکیرن کرنے کی جو شکتی ہے بھائی صاحب, یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ لگتی ہے.
ہر ایک شکتی ہمارے ٹاپک سے कनेक्शन रखती है, ऐसा नहीं कि एक शक्ति रखती है और बाकी नहीं रखती है। सबसे पहले है परख शक्ति। हमारी परखने की बुद्धि बहुत सूक्ष्म है, और अगर आपकी परख शक्ति अच्छी है तो आप स्प्लिट सेकंड डिसीजन ले सकते हैं। अगर उसमें चूक हो जाती है तो नुकसान हो जाता है। परख शक्ति के साथ साथ दूसरी होती है, परख लिया सब बात को, फिर तुरंत निर्णय करना पड़ता है। निर्णय शक्ति भी बहुत बहुत आवश्यक है, और निर्णय बड़ा एक्यूरेट होना चाहिए। अगर एक्यूरेसी नहीं है निर्णय लेने में तो भी मुश्किल हो जाती है। कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कि डॉक्टर एक बात कह के गया है, पेशेंट के रिलेटिव्स दूसरी बात कह रहे हैं, पेशेंट को प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, ऐसे टाइम पर क्या करेंगे आप? तो वहां आपकी एक्यूरेसी काम करेगी। आपको जो राइट लगता है वो अगर आपने किया तो पेशेंट को भी फायदा होगा, उनके जो भी रिलेटिव्स हैं वो भी खुश होंगे, और डॉक्टर भी कहेगा आपने ये बिल्कुल ठीक किया, ये नहीं कहेगा मेरे पूछे बिना आपने ये क्यों कर दिया, ऐसा नहीं कहेगा। तो निर्णय शक्ति भी बहुत बड़ी शक्ति है, और वास्तव में तो आज के युग में इसकी हर दिन हर सेकंड जरूरत रहती है। फिर इसके साथ में है, कई बातें ऐसी हो जाती हैं अपने सामने, कोई ना कोई हमारे कोलीग्स की बातें होती हैं, उसके लिए चाहिए समाने की शक्ति। आपने कुछ देखा ऐसा, कुछ जाना, लेकिन उसको समा देना। क्यों? कोई अगर नेगेटिव बात है उसको आपने वर्णन किया, आपने थोड़ा सा वर्णन किया, वो दूसरे जिसको सुना रहे हैं वो आगे चल के उसको चार नहीं तो पांच गुना आगे बढ़ाएंगे। कई ऐसी उसके लिए कहानियां हैं कि कहां से बात शुरू होती है, थोड़ा धुआं देखा, धुआं से फिर क्या क्या हुआ, आग लगी हुई थी, ये हुआ वो हुआ, हुआ कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत एक एक्यूरेसी उसमें चाहिए अपने सोचने में। और फिर इसके बाद है कि बहुत विस्तार में चले जाते हैं कई बातों में। मैं हॉस्पिटल के अंदर था, डॉक्टर्स की आपस में मीटिंग्स होती हैं, केस को डिस्कस करते हैं, इतना लंबा डिस्कशन होता है। होता तो पेशेंट के फायदे के लिए है, ऐसा नहीं कि वो कोई गलत कर रहे हैं, लेकिन आपस में राय सलाह करके आखिर एक मत जब होते हैं तो उसके बाद वो दवाई जो देते हैं उसका फायदा देखने में आता है। नहीं तो किसी की कोई फेवरेट होती है, किसी की कोई फेवरेट होती है। तो उस हिसाब से बहुत जरूरी है, आपस में कोऑपरेशन की जरूरत है। कोऑपरेशन के बिना गाड़ी आगे नहीं चल सकती है, और कोऑपरेशन के फलस्वरूप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि कभी कभी एक खाई आपको क्रॉस करनी है, सीधा अगर जाते हैं तो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो क्या करना पड़ता है? थोड़ा पीछे जाना पड़ता है, थोड़ा अपने लिए डिस्टेंस चाहिए कि थोड़ा अच्छी तरह से दौड़ लगा करके उसको खाई को क्रॉस कर सके। तो वो विड्रॉल वाली जो बात है, विड्रॉ करना आना चाहिए हमें कि हम कैसे कभी कभी जल्दी में भी होते हैं, बहुत जल्दी होती है, ये करना है ये करना है ये करना है, लेकिन उस जल्दी में आप देखेंगे कभी कभी नुकसान हो जाता है। तो कभी कभी थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें जल्दी में कोई स्टेप ना लेकर के एक्सीडेंट नहीं करना है, थोड़ा पीछे जाके थोड़ा सोच करके। और इसके साथ में फिर कभी कभी समेटने की भी जरूरत पड़ती है, सब कुछ करते हुए भी। लेकिन फिर ऐसा समय आ जाता है जब हमें समेटना पड़ता है। जैसे कछुए को देखते हैं, वो चल रहा है, लेकिन चलते चलते अगर उनको लगता, डर लगता है, कोई उनको पत्थर मार देता है, डंडा मार देता है, तो क्या करता है वो? अपने अंग अंदर सुकेल देता है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें अपनी सेफ्टी के लिए, कभी भी कुछ भी हो, अपनी सेफ्टी के लिए कछुए की तरह विड्रॉल बहुत जरूरी हो जाता है। विड्रॉ करेंगे, शांत रहेंगे, तो आप देखेंगे कि उसकी रिजल्ट क्या मिलती है। कभी कभी आपको प्रोवोक करने के लिए लोग आएंगे, कुछ बोलेंगे, तीखा बोलेंगे, किसी के लिए नेगेटिव बोलेंगे। अब ऐसे टाइम पर अपना पॉइस बना के रखना, पीसफुल रहना और फिर पॉजिटिव रहना। पीसफुल रहें, लेकिन पीसफुल में कभी कभी होता अंदर ही अंदर नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, वो नहीं चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए। हर बात में पॉजिटिविटी, वो चीज हमने, हमारे जो फाउंडिंग फादर ब्रह्मा बाबा थे, उनसे बहुत सीखने को मिला। बाय चांस कोई चलते चलते ठोकर लग गई, गिर गया, थोड़ी चोट भी लग गई, तो बड़े प्यार से उनको कहेंगे, बच्ची इसमें भी कोई कल्याण है, ठोकर लगी, गिर गई, तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो गई, पता नहीं ट्रेन में जाती कुछ और हो जाता, इससे तो अच्छा है यहीं रह गई। लेकिन भाव ये है कि जल्दबाजी में, खासकर ये नर्सिंग केयर में, तो जल्दबाजी एक तरफ जरूरत है, फटाफट फटाफट, खासकर आईसीयू में जो होती हैं नर्सेज, उनकी तो बहुत मेहनत का काम चलता है। लेकिन दूसरी भी सब, जो भी नर्सिंग स्टाफ है, उनका है ही ऐसा कारोबार कि दे हैव टू बी वेरी फास्ट, वेरी एक्यूरेट। उसके अंदर थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे हो गया, डॉक्टर नाराज हो जाएंगे, पेशेंट की तबीयत और बिगड़ जाएगी, और तबीयत बिगड़ेगी तो उनके रिश्तेदार खुश होंगे, वो भी तो नाराज होंगे, फिर वो झगड़ा करने लगेंगे, फिर किसका सामना करेंगे आप? डॉक्टर का सामना करेंगे, उनका सामना करेंगे, उनके पेशेंट को, पेशेंट के रिश्तेदारों का सामना करेंगे, बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन सामना करने की भी शक्ति चाहिए, सामना करने की शक्ति के लिए मनोबल बहुत ऊंचा चाहिए, और वो तब हो सकता है जब आपने अपना कार्य बिल्कुल एक्यूरेट किया होगा। अगर अपना कार्य एक्यूरेट नहीं किया होगा तो आपको अंदर से, दिल से वो हिम्मत नहीं आएगी। हिम्मत तभी आती है जब आपने अपने हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट काम किया है, और फिर भी अगर कोई ऊपर से कुछ गलत व्यवहार करते हैं तो उनका सामना करना बहुत जरूरी है। उस समय कहेंगे भाई कोई बात नहीं, छोड़ दो, ऐसा नहीं है, नहीं तो वो आपका बदनामी करेंगे फिर दूसरी जगह। ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अपना रिकॉर्ड भी आपको अपने अपने हाथ में रखना है, दूसरा कोई उसके ऊपर हम डिपेंड करें वो नहीं। हमारे रिकॉर्ड को हम अच्छे से अच्छा बना करके चलें, उससे जैसी कोई बात नहीं है। तो ये खास मेरे ख्याल में आती हैं बातें कि ये अष्ट शक्तियां जो परमात्मा के साथ मन लगाने से हमें प्राप्त होती हैं, वो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत काम आती हैं। और अगर वो अष्ट शक्तियां अच्छी, देखो आजकल, मैं कल भी बोला था कि यहां परसों कि अभी देवियों के दिन आ गए हैं, तो कल से शुरू हुए हैं नवरात्रे। आप लोगों को बड़ी खुशी होनी चाहिए इस बात की कि हमारे दिन आ गए। कौन सी देवियां पूजी जाती हैं? जिन देवियों ने समाज की सेवा की हुई है उनको भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न नाम से वो पूजा जा रहा है। और अगर आपको ब्रह्मा कुमारी की तरफ से उसकी झांकी देखनी हो तो वो भी आज से शुरू हो रही है। यहां पास में ही है, कोई दूर नहीं है, 45 फुट ऊंची झांकी है और उसमें सभी देवियों को बिठाएंगे और देखो जा करके, वो इतना शिव बाबा के साथ मन लगा के बैठती हैं कि आंख भी आपको झपकते हुए नजर नहीं आएगी उनकी। ऐसा लगेगा ये तो स्टैचू हैं जैसे, यहां है चैतन्य देवियां, लेकिन उन्होंने भी ये अपनी स्थिति कैसे बनाई? जब अभ्यास किया, परमात्मा पिता के साथ मन लगाया, क्योंकि परमात्मा सदा एक रस है। हम आप सभी कभी कभी ऊपर नीचे होते हैं, जैसे हार्ट की वो दिखाते हैं ना, वो वेव्स ऐसे ऊपर नीचे हो सकते हैं। परमात्मा का बहुत ऊंचा स्थान है, कहा ही जाता है ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम, और ऊंचे धाम में रहने वाला वो सदा साक्षी होकर के सब कुछ देखता है, और साक्षी होकर देखता है लेकिन चुप नहीं रहता है। जब बच्चों के अंदर देखता है इनमें शक्ति नहीं है, इनको शक्ति की जरूरत है, तो स्वयं पधारकर, स्वयं इस धरा पर आकर, फिर हम बच्चों को, हम आत्माओं को बहुत सहज रास्ता दिखाता है। इसलिए उसका नाम ही दिया है सहज ज्ञान, सहज राजयोग। सहज, सहज माना जो स्वाभाविक है, नेचुरल है, मुश्किल नहीं है। उस रास्ते से थोड़ा सा कोई एक्सपोज हो जाए, मैं समझता हूं उसका जीवन सफल हो जाएगा। हर एक चाहता है कि मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, इसमें हमें मोक्ष शब्द तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाए। वो प्राप्ति कैसे हो सकती है? प्राप्ति होने का तो एक ही तरीका है कि एक तो स्वयं को पूरा ठीक से पहचान लें, अपनी आइडेंटिटी जो है उसको ठीक से जानें। एक आइडेंटिटी है आपको एज ए प्रोफेशनल, लेकिन प्रोफेशनल के साथ साथ आपकी दूसरी आइडेंटिटी जो है कि आप एक परमात्मा की अति प्यारी संतान आत्मा हो। हर आत्मा में वही गुण हैं जो पिता परमात्मा में है। बाप ने वर्षे में वही गुण दिए हुए हैं, वही शांति, वही पवित्रता, वही प्रेम, वही आनंद। ये सब जो भी गुण हैं परमात्मा के, वो हम सब आत्माओं को वर्षे के रूप में दिए हुए हैं, लेकिन चलते चलते लाइफ आफ्टर लाइफ थोड़ा भूलते गए। फिर भी आप देखेंगे कि आज भी अगर देखें, कलयुग का कौन सा समय चल रहा है? कलयुग चल रहा है ना, सतयुग तो नहीं है। तो कलयुग के ऐसे समय पर जबकि चारों तरफ मायावी वातावरण है, मेटीरियलिस्टिक माइंडेड लोग हैं सब लोग, ऐसे टाइम पर भी आप बहनों भाइयों को अंदर से आया कि हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाएं, वहां जाकर के कुछ मेडिटेशन सीखें, वहां से कुछ ज्ञान की बात सीख करके आएं, तो ये क्या सिद्ध करता है? ये सिद्ध करता है कि आपके ओरिजिनल जो संस्कार हैं, वो संस्कार हैं ही वास्तव में पिता के समान, परमात्मा पिता के समान वो संस्कार हैं, उनको फिर से जागृत करना है। और जितना जितना उनको जागृत करेंगे, जितना उसके अनुसार अपने जीवन को ढालते जाएंगे, तो आपका मनोबल बढ़ता जाएगा, आपका आत्मिक बल बढ़ता जाएगा, आपका सशक्तिकरण होता जाएगा। आजकल कई सशक्तिकरण की स्कीम्स लोग निकालते हैं, हमारी गवर्नमेंट बहुत निकालती है, इसको सशक्तिकरण करना, उसको से, उससे कोई सशक्तिकरण नहीं होता है, चार पैसे बांट दिए उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन अपने जीवन के अंदर ऐसे मूल्य प्रिंसिपल्स वो धारण करने, जिससे कि एक व्यक्ति अपने आप अपने जीवन की वैल्यू को समझे, अपने सोमान में वापस आकर के रहे, और उस सोमान के अनुसार फिर दूसरों की भी सेवा कर सके। दूसरों की सेवा करने से आपने कईयों के मुख से सुना होगा, खासकर जो आपका प्रोफेशन है उसमें सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, सबकी दुआएं भी साथ में मिलती हैं, और दुआओं के कारण आप देखेंगे कि आपको जितनी अंदर से खुशी रहती है, जितनी शांति रहती है, वो दूसरे दुनिया के लोगों को इतनी नहीं रहती है। लेकिन एक ही चीज है, कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन जहां होता है वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या ये पॉसिबल होगा कंपटीशन में हेल्दी कंपटीशन हो जाए, एक दो को देख करके आगे बढ़े, एक दो से प्रेरणा लें, ये नहीं कि ये आगे चली जाएंगी तो मैं पीछे रह जाऊंगी, इस तरह से नहीं होना चाहिए। बल्कि अगर आप किसी को आगे करते हैं तो आप उससे भी आगे चले जाते हैं, ये भी प्रैक्टिकल देखने में आता है। तो इस तरह से ये जो अष्ट शक्तियों की बात है, एक एक का वर्णन बहुत डिटेल में है, जब उसको हम अप्लाई करते प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि ये ईश्वरी ज्ञान जो है ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, इट्स प्रैक्टिकल। जैसे हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स अरिथमेटिक्स पढ़ते थे, इसी तरह से ये अप्लाइड स्पिरिचुअल साइंस है। स्पिरिचुअल साइंस की एप्लीकेशन जो है जीवन में, वो हर कदम पे हमको मदद करती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, एक प्रोफेशनल के नाते से आप पेशेंट को देखते हैं, एक साइड वो है, और दूसरी साइड क्या है, आत्मिक दृष्टि से किसी को देखना कि ये आत्माएं हैं जिन पेशेंट्स की मैं सेवा कर रही हूं, ये मेरे परम पिता परमात्मा के ही बच्चे हैं, इनकी सेवा के निमित्त मैं यहां पर हूं, इनकी सेवा करेंगे तो परमात्मा पिता भी मेरे से बहुत खुश होगा, ये खास बात अपने दिल में रखने की जरूरत है। तो जितना जितना आप उस भावना से काम करते हैं, मैं समझता हूं उतना आपके मन में खुशी भी रहेगी, शांति भी रहेगी, आनंद भी रहेगा, और लचीलापन भी अपने आप आ जाता है फिर। नहीं तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण स्ट्रेस बढ़ जाती है, और स्ट्रेस जिसको होगी, एक चीज आप मान के चलिए, अगर आप स्ट्रेसफुल हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग को वो जरूर अफेक्ट करेगा, डिसीजन मेकिंग में कोई ना कोई गलती हो जाएगी। इसलिए कोई गलती भी ना हो, आप बिल्कुल आराम से अपनी सेवा करते रहें और अच्छी तरह से अपना कार्य कर सकें, खुशी में रहें, मौज में रहें, परिवार भी आपके साथ बहुत खुश रहे, और इसी तरह से समाज की भी खूब सेवा कर सकें, तो उसका एक ही तरीका है कि अपने माइंड को रिलैक्स्ड रखना है। और उसका तरीका जो है, जो मैंने आज समझो 58 साल के अंदर अनुभव किया है, जब से शुरू किया, स्टार्ट योर डे वेल, सुबह की शुरुआत जो है उसको अच्छे ढंग से करें। मुझे पता है कि आपकी कई ड्यूटीज बदली होती रहती हैं, 8-8 घंटे, कभी दिन में, कभी रात को, कभी दोपहर के बाद, इस तरह से होती है। लेकिन जहां लक्ष्य रहता है तो लक्ष्य के साथ लक्षण आ ही जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने से बहुत कुछ हो सकता है। जब भी आप आराम करके उठते हैं तो पहला संकल्प क्या करेंगे? उस समय टीवी न खोलना, अखबार न देखना, नहीं, पहले पहले परमात्मा से गुड मॉर्निंग करना। बड़ों से गुड मॉर्निंग करते हैं ना, छोटों से भी करते हैं, लेकिन बड़ों से ज्यादा करते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? पिता परमात्मा है। तो उनके साथ मन लगाएंगे, गॉड के साथ मन लगाएंगे, गुड मॉर्निंग कहेंगे, तो आपका सारा दिन गुड 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 ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उससे आपकी मानसिक स्थिति बहुत ऊंची लेवल पर चली जाती है। इतना मनोबल बढ़ जाता है, इतनी एक्यूरेसी आ जाती है, इतनी क्लैरिटी आ जाती है कि आपको चिंता नहीं रहती कोई भी। फिर इसके बाद है, बुद्धि को भोजन चाहिए थोड़ा। जैसे ज्ञान सुनते हैं तो वो क्या चीज है? बुद्धि का भोजन है। बुद्धि का भोजन मिलेगा तो उससे हमारी डे टू डे लाइफ में कई बातें हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते कभी एक के पास जाएंगे, कभी दूसरे के पास जाएंगे, और वकील के पास जाएंगे तो क्या होगा? वो डेट पे डेट लेता जाएगा ताकि उसकी फी बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, तंग आ जाएंगे उसमें। इसलिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि एक तो अपने लिए कोई झमेला ना आप क्रिएट करें, किसी से दुश्मनी, किसी से जेलेसी, उस बात को अवॉइड करें। और कैसे कर सकते हैं? एक ही उसके अंदर छोटी सी बात अप्लाई करें, ये आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं, इनको ज्ञान नहीं है, मुझे तो ज्ञान है, मैं तो इनके लिए शुभ चिंतक बनूं, मैं ऐसा काम नहीं करूं जो मैं इनको दुख दूं, क्योंकि जो दुख देता है तो उसको रिटर्न में क्या मिलता है? कोई दुख देगा तो रिटर्न में सुख मिलता है? नहीं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो सब ऐसी ऐसी बातें जो हैं प्रैक्टिकल में अपने लाइफ में अप्लाई करें। तो इसलिए सवेरे सवेरे अपने मन को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए ईश्वरी ज्ञान की कुछ बातें पढ़ लें या सुन लें। आजकल तो देखिए मॉडर्न जितने भी तरीके हैं, टीवी के द्वारा है, दूसरे ये रेडियो के द्वारा है, तो आपको पता लगता है कि हमें अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाने से कितने फायदे हो सकते हैं। पॉजिटिविटी हम सबका स्वधर्म है, वास्तव में हम सब आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति, सब आत्माओं का स्वधर्म है ही पवित्रता, सब आत्माओं का स्वधर्म है ही प्रेम, सब आत्माओं का स्वधर्म है ही आनंद। ये थोड़ा अपने स्मृति में सुबह सुबह ले आएंगे तो सारा दिन शांति में जाएगा, प्रेम से जाएगा, आनंद में जाएगा, खुशी खुशी, और वो एनर्जी आपको अंदर अंदर परमात्मा से मिलती रहेगी। कितनी भी सेवा करेंगे थकेंगे नहीं। और अगर नहीं इस तरह से हम चलते हैं तो आप देख रहे हैं कि जब ड्यूटी पूरी होती है शाम को या दोपहर को, उसके बाद क्या कहते हैं घर जाके, भाई मैं एग्जॉस्ट हो गई, बिल्कुल आज थक गई, आज बहुत ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो ऐसी बातें ना आए आपके सामने। सदा खुश रहें, मौज में रहें, उसको हम लोग बड़ी सिंपल से शब्दों में कहते हैं शिव बाबा की याद में उड़ते रहें और दूसरों को भी उड़ाते रहें, बस ये काम करना। तो जितना ऐसे लक्ष्य रखेंगे तो सारी समस्याओं का हल हो सकता है। और एक मेरे अपने अनुभव की जो बात है, हमें कई बार जो सीनियर होते हैं जब भी, तो जूनियर्स के बारे में कोई आकर के कंप्लेंट करता है, तो हम उसके अनुसार अगर बायस्ड हो जाते हैं किसी के कंप्लेंट करने पर, जैसे ही वो व्यक्ति सामने आएगा तो उनको उसी नजर से देखेंगे। लेकिन इसमें चाहिए आपको साक्षीपन रखना। किसी ने कोई बात सुनाई, सुन ली, और उनको इतना ही कहना है कि भाई ठीक है, इसका मैं पता करूंगी, इसका पता करूंगा, फिर वो बात जिसकी है उसके साथ जब बात करेंगे तो वो अपनी बात सुनाएगा, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि जिसने आपको फीड किया पहले उसने राइट किया या रॉन्ग किया, एंड देन यू कैन डिसाइड क्या करना चाहिए। और करने के लिए भी हमारे पास, तो जो यहां की बातें हैं मैं आपको बताऊं, पनिशमेंट की कोई बात नहीं करते हम, लेकिन रिफॉर्म करने की बात जरूर करते हैं। रिफॉर्म करने के लिए उनको रास्ता बताएंगे, थोड़ा उनको विशेष ध्यान देंगे कि भाई आप थोड़ा मेडिटेशन ज्यादा करो, क्योंकि हमें फाउंडिंग फादर ने ये बताया कि जब आप 8 घंटा सारे दिन में 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा ड्यूटी करो, और 8 घंटा बाकी जो है वो उस समय आपका मन परमात्मा के कारोबार में रहे, उनके साथ लगा रहे, तो आप 8 घंटा अगर अपने लिए सोचते हैं, होगा नहीं, ये मैं पहले से बता देता हूं, आप नोट करना शुरू करेंगे मुश्किल से 1 या 2 घंटा ही होगा, लेकिन धीरे धीरे लक्ष्य रखने से बढ़ता जाता है। तो जितना आप अपने ऊपर अटेंशन देंगे, तो क्या कहेंगे, सो परिवर्तन, सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। हम अगर अपने में परिवर्तन ले आएंगे, हमें देख करके दूसरे अपने आप चेंज हो जाते हैं, हमें किसी को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बोलना भी हो, हमने बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा को कोई भी बात होती थी तो बाबा 1 या 2 शब्दों में हम लोगों को कहते थे, अच्छा बच्चे आगे के लिए ध्यान रखना। अब आप सोचिए इसमें कितना टाइम लगता है, लेकिन उसके कारण हमारी फेथ बाबा में इतनी रही, कभी भी कोई ऊंचाई निचाई हुई फट जाके बाबा के सामने सुना देना, हल्के हो जाना, और फिर उसके बाद बाबा ने जैसे कहा, हाँ अगर थोड़ी भूल कोई ज्यादा हुई है तो बाबा कहेगा बच्चे 8 दिन के लिए योग भट्ठी करो, खास तपस्या करो ताकि ये संस्कार मिट जाए। अब ये चीज एक आपको थोड़ी सी नई लगेगी कि जो पुराने संस्कार हैं, किसी के गुस्से के संस्कार होते हैं, किसी के रूठने के संस्कार होते हैं, वो संस्कार वैसे कहें हम रोज वो लिखेंगे, आज से मैं रूठना बंद कर दूंगी, अगले दिन देखो तो फिर रूठी हूं, आज से मैं गुस्सा करना बंद कर दूंगी, फिर गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को रियलाइज कर लें कि हम परमात्मा के बच्चे कहीं पर भी हैं तो एक सैंपल रूप में हैं, तो सैंपल को देख करके तो परमात्मा को लोग पहचान पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने आप पर इतना ही अटेंशन रखना है कि अपने मूड को बिल्कुल कैसा रखना है, हाँ मूडोमीटर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल एकदम खुशनुमा होना चाहिए। और खुशनुमा का एक ही तरीका है, वो शब्द आते हैं संस्कृत के, परमात्मा कहते हैं मन मना भव, मन मेरे साथ लगाओ तो परमात्मा के साथ मन लगने से हमेशा लाइट रहेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे, खुश रहेंगे। मन खुश रहेगा तो जीवन भी खुशनुमा रहेगा, जीवन खुशनुमा को देख करके दूसरे सीखेंगे। यू विल बिकम, जैसे आप नर्सिंग केयर के अंदर माने जाते हैं कि भई आप जैसे फरिश्ते हैं, इसी तरह से फरिश्ते प्रैक्टिकल में और हो जाएंगे कि साथ में शांति का भी, प्रेम का भी, आनंद का भी, हर एक को आप अपने मुस्कुराने से सिखाते जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूं जो मेरी विषय थी मैंने काफी हद तक उसको कवर किया है, हो सकता है कुछ रह भी गया हो, लेकिन अभी टाइम है मेरे पास 10 मिनट। अगर आपको किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो मेरे को चिट्ठी लिख के भेज दें, और नहीं तो हम मेडिटेशन करके पूरा कर देंगे। आपको 5 मिनट पहले छुट्टी दे देंगे ताकि आप थोड़ा फ्रेश अप हो सको नेक्स्ट टॉपिक के लिए। माइक पे बोलेंगे तो सब सुनेंगे। जी
बोलिए, बोलिए, आप माइक पे बोलिए।
लिखेंगे।
आजकल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं ना, पानी बचाओ, जल बचाओ, पर्यावरण बचाओ, लेकिन एनर्जी बचाओ, हाँ, खुद की जो मेंटल एनर्जी हम इतना वेस्ट कर रहे हैं उस बचाव के ऊपर किसी का ध्यान है? एनर्जी बचाओ अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, इवन फिजिकल हेल्थ के लिए भी हम कॉन्शियस है, लेकिन मेंटल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ मेंटेन रखने के लिए हमने कोई प्लानिंग बनाई है? तो वो प्लानिंग हमें शिव बाबा राजयोग के द्वारा सिखा रही है, क्योंकि एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, और परमात्मा ये सबसे सुपर एनर्जी है, सुप्रीम एनर्जी। अगर उनसे मन लगाएंगे तो ऑटोमेटिक, जो भाई साहब बोल रहे थे कि अष्ट शक्तियां जो हमारे चैलेंजिंग लाइफ को कंफर्टेबल और सहज बनाने के लिए बहुत जरूरी है, और आज हम देखते हैं भाई साहब 78 इयर्स के हो गए हैं फिर भी उनके फेस में कितना चार्म है। तो ये सब अष्ट शक्तियों का कमाल है जो उन्होंने जीवन में राजयोग के द्वारा धारण की है।
बड़ी सिंपल सी बात लिखी है इन्होंने। अगर हम कुछ लिखते हैं तो उसको फाड़ दें क्या, फाड़ दें या जमा करके रखें? हम तो कहते हैं कि रोज का रोज इरेज करते जाओ। उसका तरीका बता देता हूं, जो भी आपके लिखने की कोई बात हो, पहली बात है किसको लिख रहे हो, तो हम कहेंगे शिव बाबा को सामने रख के उनको लिख के देना है, ताकि जो चीज आप लिख के देते हैं तो एक प्रकार से कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, सुना है कभी? तो ये आप शिव बाबा को दान दे दो, जो चीज आपके काम की नहीं है, आपको किसी को गुस्सा आ जाता है, कोई दूसरी बातें आ जाती हैं, तो उसका एक ही तरीका है, एक तो वो दे देने का शिव बाबा, और दूसरा है फिर कि मनोबल को बढ़ाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम उमंग में आकर के छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पुराने संस्कार आदत के वो फिर से गड़बड़ कर देते हैं, तो उसके लिए ये तरीका है परमात्मा पिता को सन्मुख देखते हुए जैसे लिख के देने का। भले आप फाड़ दो उसको बाद में, उसकी कोई बात नहीं है। आपने दिल से पिता परमात्मा के सामने अपनी बात रख दी तो उनको पहुंच जाती है वो। फिर जब कभी आने लगे दोबारा गुस्सा तो बाबा आ जाएगा बीच में, शिव बाबा बीच में आ जाएगा। वो आपको स्मृति दिलाएगा, बच्ची ये तो आपने मेरे को दे दिया है, दान दी हुई चीज कभी वापस नहीं लेनी चाहिए, इसलिए अभी दोबारा इसको मैं नहीं लूंगी। बस वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 7 दिन लगेंगे पूर्णतया गुस्सा चला जाएगा। कोई भी कमी है अगर आज आप संकल्प करेंगे तो 7 दिन के अंदर जीरो हो जाएगी बिल्कुल। क्यों? परमात्मा का स्वरूप जो है ना, क्या कहते हैं, बिंदी है, जीरो है। तो जीरो से मल्टीप्लाई रोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सर। पर उसके साथ जब आप एक रखते हैं तो जीरो जीरो, परमात्मा की याद में जितना मन लगाते जाएंगे उतने जीरो बढ़ते जाएंगे, तो इतना आपकी याद की शक्ति बढ़ती जाएगी। दोनों साइड है, एक तरफ पुराना हिसाब खत्म करना, दूसरी तरफ मनोबल को बढ़ाने के लिए परमात्मा की याद को बढ़ाते जाएंगे तो आपके अंदर वो शक्ति इतनी हो जाएगी कि आप कभी भी रॉन्ग स्टेप नहीं लेंगे अपने लाइफ में। ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहनों के सामने डिफिकल्टी आती है। कहते युगल में से एक ही ज्ञान में चलता है, कहना चाहिए चलती है, तो क्या करें? पति देव इसमें नहीं मानते तो अपने को इसमें इससे कैसे बचाएं? आप बचाओ नहीं अपने आप को, उसको साथ लेकर के यहां आ जाओ। गाड़ी के दोनों पहिए साथ चलने चाहिए, हम क्यों इतना डरते हैं? उनको आप ले आइए, इस वायुमंडल को देखेंगे, इस स्थान को देखेंगे, ऊपर बाबा के रूम में जाएंगे, म्यूजियम देखेंगे, सारी बातों को, और भाई बहनों के साथ जब बातचीत करेंगे उनको खुद को आएगा कि इतनी अच्छी जगह ये आती हैं, इतनी अच्छी बातें सुनती हैं, तो मैं इनको रोकूंगा तो मेरे ऊपर पाप चढ़ जाएगा। वो उसी दिन से आपसे भी आगे जाने लगेगा। ऐसे कई केस देखे हैं, बहुत प्यार से बहनें ले आती हैं पति को, साकार बाबा के सामने भी ऐसे मैंने देखा है, उनके सामने ले आते थे तो बाबा उनको बहुत प्यार से दृष्टि दे करके पूछते थे, बच्चे पवित्र रहेंगे? तो बच्चे जब सुना बाबा के मुख से इतना प्यार उसके अंदर, बोला जी बाबा आप कहेंगे तो मैं जरूर रहूंगा। हाँ बाबा तो कह रहे हैं, फिर तो आज से आपको ये कंगन बांधना है। उसी टाइम पर राखी मंगा करके उसको बांध देते थे, आज दिन तक वो पवित्र चल रहे। मैं 1963 की बात कर रहा हूं, जबकि ये मेरे आंखों देखी बात है। वो भाई और बहन इतने अच्छे अभी तक चल रहे हैं। क्यों? बात सारी है समझ की, कि आपकी ये जो एनर्जी है ये आपको मदद करती है परमात्मा के नजदीक जाने में। उसको आप वेस्ट करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो इसलिए बहुत अच्छे ढंग से इन चीजों को समझ करके, कई लोग फिर थोड़ा माफ करना, आपके प्रोफेशन में कुछ डॉक्टर्स ऐसे मिल जाते हैं, वो कहते हैं नहीं 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 इस तरह से नहीं चल सकते आप, बस फिर आप मुंझ जाएंगे। आपकी अंतरात्मा क्या कहती है उसको आप सुनो। आत्मा की अंदर की आवाज क्या है, वो पवित्र रहना चाहती है या अपवित्रता में ही रहना चाहती है? तो आपके संस्कार ही हैं अगर पवित्र रहने के, तो आपको सभी सहयोग देंगे, पतिदेव भी सहयोग देंगे। ऐसा कोई नहीं है जो ऐसे आपको, हाँ, बाबा तो कभी कभी ऐसे प्यार से कह देते, तुम कोई रेड बकरी हो क्या जो तुमको इतना फिक्र रहता है, कोई गला काट देगा तुम्हारा, कोई नहीं कुछ कर सकता। आप अपने निश्चय में पक्के रहो बस।
और एक क्वेश्चन है भाई साहब कि जब हम रिएक्ट नहीं करते हैं, चुपचाप सुनते रहते हैं, तो सामने वाला हम पर हावी हो जाता है और उस कमजोरी समझकर, हमारे चुप रहने को कमजोरी समझकर नाजायज फायदा उठाता है।
इसका जवाब डॉक्टर प्रताप देंगे। हम चुप रहते हैं, मेरे को कई बार ये कहते हैं आप बोलते नहीं हो, फिर कौन कौन ज्यादा शक्तिशाली है वो प्रताप भाई बताए। हॉस्पिटल की कोई बातें आती हैं कोई भाई बहनों की, सुन लेता हूं मैं, लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य रहता है, सुनी फिर दूसरे की भी सुननी है और दोनों को शांत करना।
इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में अपने आप को मेंटली कैसे स्टेबल रखे? इस कंपटीशन के जगत में हम अपने आप को कैसे स्टेबल रखें?
कट थ्रोट कंपटीशन में अपने आप को मेंटली कैसे स्टेबल रखें? बड़ी सिंपल सी बात है, हम राइट पुरुषार्थ करें, जो हमारा फर्ज है उसको निभाएं। अपना पुरुषार्थ अगर अच्छा होगा आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन होगी। कंपटीशन में आज कोई आपसे ज्यादा भी आगे चला जाएगा कोई हर्ज नहीं है, उसके लिए शुभकामना रखो, आप उनसे भी आगे चले जाएंगे, ये मैं आपको एश्योर करता हूं, ये मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में।
कृपया अष्ट शक्तियां एक बार लिस्ट आउट कीजिए, वो तो हमारे 7 डेज कोर्स में एक बहुत एक लेसन ही है अष्ट शक्तियों के ऊपर, तो उसमें आपको विस्तृत तरह से जानकारी मिल जाएगी।
उसमें बहुत अच्छे चित्र के साथ वो सारा दिया हुआ है, उसको आप देखेंगे, लिखत में भी बड़ी क्लियर उसके अंदर समझानी दी हुई है। 7 डेज कोर्स की किताब पढ़ी है आप सभी ने? हाँ, नहीं पढ़ी हो तो ले लेना पढ़ने के लिए, उससे बहुत आइडिया मिल जाएगा आपको। हाँ जी,
ओम शांति। तो हमारे आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें अमूल्य गाइडलाइन दी है अपने जीवन को खुशनुमा और इजी कैसे रखें। क्योंकि भाई साहब हमेशा अपने जीवन को, मैंने देखा कि उनका हमेशा पर्पज अपने को इजी रखने का होता है, हमेशा एंजेलिक फॉर्म में भाई साहब हमें दिखाई दे।
एक बार मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला था, तो ऑस्ट्रेलिया में वहां के भाई बहनों ने पब्लिक प्रोग्राम के लिए ये टॉपिक रखी हुई थी, इजी राजयोगा फॉर बिजी पीपल, इजी राजयोगा फॉर बिजी पीपल। तो यही चीज आज मैं देख रहा हूं कि बिजी तो आप बहुत रहते हैं, मुझे पता है, हॉस्पिटल के अलावा घर पे भी बिजी होते हैं, समाज में भी बिजी होते हैं, लेकिन साथ में इजी राजयोगा, बीच बीच में अपने आप को याद दिला दीजिए थोड़ा, तो आप देखेंगे कि वो जैसे कार चलाते हैं ना, बीच में थोड़ा थोड़ा एक्सेलरेटर दबाते जाते हैं तो आराम से चलती है गाड़ी। ऐसे ही आपके जीवन की गाड़ी बहुत स्मूथ चलेगी, बहुत मौज में रहेंगे, आपको देख करके दूसरों का कल्याण हो जाएगा। ओम शांति।
देखो आपको वरदान मिल गया, अभी इजी हो जाएगा सब कुछ। तो अभी नर्सिंग कॉन्फ्रेंस की तरफ से भाई साहब को मोमेंटो दिया जा रहा है। तालियां बजाते रहिए। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।